गीता अ18 के श्लोक नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है, कहाँ है, कैसा है, जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन।
कहते हैं जब परमात्मा कबीर देव जी आए थे उनके साथ मजाक कर दिया था और 18 लाख व्यक्तियों को चिट्ठी लिख दी थी कबीर जी भंडारा करेंगे। और कबीर जी झोपड़ी में रहा करते, भगवान लीला करते थे कि भगवान बजो मेरे की तरह, फिर देखना परमात्मा के हाथ। 18 लाख व्यक्ति आगे, श्याम का आटा भी घर पे नहीं था, परमात्मा लीला वहां तो कबीर रूप में बैठे हैं एक गरीब व्यक्ति के रूप में। और सतलोक में गए, वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर बना बना सारा सामान सतलोक से लेके एक सेकंड में यहां आ गए गर्मा गर्म और भंडारा ला दिया। 3 दिन तक 18 लाख व्यक्तियों का भंडारा छिका दिया परमात्मा ने। और चिट्ठी में लिखा था कि कबीर एक असरफी देगा, सोने की एक दोहर देगा, कंबल वो भी साथ दिए थे। यानी उनका मुंह मोड़ने के लिए जो भगवान कबीर जी को नीचा दिखाना चाहते थे। तो पुण्यात्माओं, तब कबीर जी ने कहा था, ये खाकी खंजूसपुर अनका नहीं सुमार। और दूसरा रूप केशव नाम धरका गए थे, एक व्यापारी का रूप बना के, गरीब दास केशव के अनका नहीं सुमार। परमात्मा ने कहा ये तो खाकी खंजूस, यु तो कति कंजूस खोखापुर है, यू खाली इसमें ना कुछ भी, हम तो सतलोक से लेकर आऊ सारा सामान यहां पर। तो पुण्यात्मा आज वही है यहां पर। तो ये आज जो की जो व्यवस्था परमात्मा ने कर रखी, अपने पुण्यात्माओं को सुख दे रहे हैं, इनकी बुराई छुटवा रहे हैं, इनके आने वाली आपदाओं को समाप्त कर रहे हैं और इनको धनी बना रहे हैं। फिर प्रेरणा करते हैं कि बच्चों दान करो, धर्म तो दसके नहीं दसके तीनों लोग, खैर आए तुम्हें खैर है कि ज्या तुम पोख। तो फिर आपको पहले तो देते हैं, फिर कहते करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के आप बगल हो जा। एक व्यक्ति सब जगह दुखी हो लिया और डॉक्टरों ने बोल दिया ऑपरेशन होगा और 1 लाख रुपए लगेंगे। यह मालिक ने वैसे अपने जिसकी सच्ची श्रद्धा सच्ची लगन पूर्ण विश्वास हो जाता उसको तुरंत आराम दे देते, वो स्वस्थ हो गया। अब वो लाखों रुपये बचे, जान की झंझट था बचूंगा कि ना बचूंगा, वो बचा। फिर प्रेरणा भी करते हैं कि कुछ पुण्य कर बेटा। तो इस तरह वो आज ये सदा व्रत चला रखा भगवान ने, इसमें जिसका भी जो सहयोग है उसको बहुत लाभ हो रहा है। तो अब कहने का भाव ये था कि आप जी को कितनी सुविधा दे करके भगवान कहता है मेरी महिमा सुनो बैठकर ध्यान से, और कोई अब भी लटके लेगा तो फिर उसको नहीं बख्शेगा भगवान, कहीं अच्छा गर्म रजाई मिल गई है, लटके देते हो, लटके नहीं लेना। सत्संग में आकर परमात्मा की महिमा को बड़ा ध्यान से सुनना चाहिए, कितनी व्यवस्था कर रखी है, किस लिए, इसलिए कि बच्चे भगवान को पहचान सके। अब आपको दिखाता हूं कुरान शरीफ में, कुरान शरीफ का ज्ञानदाता कहता है कि वो कबीर भगवान है जिसने 6 दिन में सृष्टि रखी। अब थोड़ा सा पहले पवित्र बाइबल दिखाना पड़ेगा, ये है पवित्र बाइबल, संपूर्ण जीवन अध्ययन बाइबल, ये बाइबल है, ये है इसका जर्नल एडिटर, ये यहां से हिंदी पढ़ेंगे, प्रबंधक संपादक डेविड सटवार्ड अंग्रेजी, प्रधान संपादक डोनाल्ड सी स्टाम्स एमए एमडीवी संयुक्त संपादक ये सारे इनका ये यहां से छपा, ये देख लो मैसूर यूएसए से छपा है। अब इसमें सबसे पहले सृष्टि वो है, उत्पत्ति है इसमें, और सृष्टि के कति प्रारंभ में प्रथम अध्याय में ही जेनेसिस वन सृष्टि, जेनेसिस वन ये चार पृष्ठ पे उत्पत्ति यहां से आरंभ होती है। प्रथम आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, ये पहला दिन था, इस प्रकार ये पहला दिन हो गया। फिर दूसरा दिन हो गया, प्रकाश प्रकोष बना दिया परमात्मा ने, फिर ये तीसरा सांझ भी भोर हुआ, फिर तीसरा दिन हो गया, जो कुछ भी इसमें फलदार वृक्ष जिनके बीज एक एक जाति के अनुसार बनाए, ये इस प्रकार। अब ये तीसरा दिन हो गया, दिन और रात पर प्रभुता करें और उज्ज्वला दियारा करें, इस प्रकार सांझ हुई, फिर भोर हुआ, ये चौथा दिन हो गया। फिर यहां देखें ये प्रश्न नंबर पांच पे, वो चार पे पढ़ा आपने, अब पांच पे क्या है, सांझ हुई भोर हुई, फिर ये पांचवा दिन हो गया, छठे दिन पे आना हमना, असली बात ये है। फिर परमेश्वर ने कहा मनुष्य को हम अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें, यानी उन तक संपूर्ण से समझदार हों। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, और नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। तो परमात्मा किसा होया, मनुष्य जैसा, नर जैसा, अंडरस्टूड हो गया। अब यहां देखिएगा, इस प्रकार छठे दिन भोर हुई, सांझ हुआ, इस प्रकार ये छठवां दिन हो गया। अब सातवां दिन, और परमेश्वर ने अपना काम जिसे वह करता था सातवें दिन समाप्त किया, अपने किए हुए सारे काम से सातवें दिन विश्राम लिया, यानी छह दिन में सृष्टि रचनी, सातवां दिन विश्राम किया, बस। अब यहां से इतना ही लेना था। अब पवित्र बाइबल ने स्पष्ट कर दिया कि परमात्मा मनुष्य जैसा है, उसने अपने जैसे रूप में मनुष्य को बनाया, नर नारी करके उत्पन्न कर दिया। आगे बहुत अच्छा प्रमाण है इसमें कि परमात्मा साकार है, वो सामने खड़ा दिखाई देता है, बात करता है, बाइबल में लिखा है। अब कुरान शरीफ दिखाते हैं आपको, देखिएगा, ये कुरान शरीफ है, पवित्र कुरान शरीफ, और इसके विषय में लिखा है, ये तो इनकी अरबी भाषा है, जालिकल किताबु ला रैब जो जैसला फी ही जो, इसका अर्थ है इन्होंने किया है कि यह वह इलामी किताब है, धार्मिक किताब है, जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, यानी इसमें जो लिखा है वो फाइनल है हमारे लिए, इसमें हमने कोई डाउट नहीं, इसमें कोई गलत नहीं, इसका कहने का भाव ये। ये कहां से बना है, शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में स अनुवाद सटीपन, इसका अर्थ है स अनुवाद सटीपन, स अनुवाद। रूपांतकार है नंद कुमार अवस्थी, शेरवानी संस्करण, ये कहां से छपा है, कुरान शरीफ शेरवानी संस्करण, प्रकाशक है लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ, यहां से छपा। अब हम इसके सूरत फुरकानी 25 पर आते हैं, ये देखिएगा, ये सूरत कुरान शरीफ है और सूरतुल फुरकानी, इसको सूरत बोलते हैं, सूरतुल फुरकानी, यानी सूरत फुरकानी 25। अब इसमें यहां से देखेंगे हम, ये देखिएगा, ये 52 नंबर आयत है, 51 यहां समाप्त होती है, ये 52 शुरू होती है। फलातुतियल काफिरन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन, ये स्पष्ट लिखा कबीरन, इसको ये कुरान शरीफ कहो चाहे मजीद कहो, अब दिखाएंगे आपको। अब इसका हिंदी अनुवाद यहां किया है इन्होंने, ये 51 समाप्त हुई, 52 प्रारंभ हुई, इसका अनुवाद है ये जो हमने अरबी भाषा पढ़ी, लिखी है इसमें नागरी लिपि में। अब इस 52 का यहां अनुवाद किया है, तो ए पैगंबर हजरत मोहम्मद को कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है, तुम काफिरों का कहा न मानना, जो परमात्मा की पूजा ना करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, उनको काफिर बोलते हैं मानना, और इस कुरान शरीफ की दलीलों से जो मैं तुझे ज्ञान दे रहा हूं उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, और ये लिखना था कि वो अल्लाह फला तुतियल काफिरन व जाहिदम बिही जिहादन कबीरन, कबीरन माने कबीर के लिए तू संघर्ष कर, वो तो काफिर जो है वो नहीं मानते कबीर इज गॉड, लेकिन मैं कह रहा हूं वो कबीर है सब कुछ। अब यहां कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, खबीरा कहो, ये इसी परमात्मा का एक भाषा में भिन्नता मंत्र। अब यही नौ की नौ कुरान शरीफ है ना, कुरान मजीद नाम है इसी का, सिर्फ लिखने में अंतर किया है राइटर ने अनुवाद करते समय, वो कबीरन लिखो चाहे कबीरा लिखो एक ही बात। देखिएगा ये कुरान मजीद है, वही की वही नौ की नौ, इसमें कोई अक्षर का भी अंतर नहीं है, लेकिन ये मजीद लिख दिया अरबी मऊ अरबी मतन, यानी प्रकाशक है ऑफिस बुक डिपो 422 मटिया महल जामा मस्जिद दिल्ली 6 से। ये कुरान मजीद मुर्तजमा है मौलाना फतेह मोहम्मद खान साहिब जालंधरी, तसही मौलाना अब्दुल मजीद सरवर साहिब, प्रकाशक हैं फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड नई दिल्ली इतने। अब इसमें सूरत फुरकानी पर आते हैं, अक्षर का भी अंतर नहीं है इसके अंदर, उतना ही है। सूरत फुरकानी 25 और पृष्ठ नंबर है इसकी, इस पर 570 है, उसमें 604 है कुरान शरीफ में। अब यहां आते हैं नीचे एज इट इज, इसको नहीं अंतरमाड़ा सा भी 51 है, ये 52 शुरू होती है। फला तुतियल काफिरन ने व जिहादम बिही जिहादन जिहादन कबीरा, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीरा कहो, ये सिर्फ इसमें कबीरा लिखा उसमें कबीरन लिखा है। अब इसको कबीर कहो एक ही बात है, इससे तो इतना लेना। अब हम फिर कुरान शरीफ को ही लेते हैं। अब हमने ये जो पढ़ा है ये कुरान मजीद देखा था, अब कुरान शरीफ को फिर लेते हैं, इसका अनुवाद इससे देखेंगे। अब देखो कुरान शरीफ फिर लेते हैं, वो मजीद थी, ये कुरान शरीफ है और इसके अनुवादक प्रकाशक पहले हमने दिखा दिए हैं। ये सारा लखनऊ किताबघर से ये प्रकाशित है, मौसम बाग सीतापुर रोड लखनऊ से। अब हम इसके आते हैं 604 पृष्ठ पे, 604 पृष्ठ पे, और वही है इस कुरान शरीफ सूरत फुरकानी 25 नीचे आते हैं, ये 52 आयत है। फला तुतियल काफिरन जाहिदुम बीही जिहादन कबीरन, ये कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, कंसेप्ट क्लियर होया। अब ये क्या कहता है यहां पर कि ए पैगंबर, कुरान शरीफ का ज्ञान देने वाला अपने पैगंबर को बोल रहा है तुम काफिरों का कहा न मानना, वो काफिर नहीं मानते भगवान को, वो तो अन्य देवताओं की पूजा करते हैं। और इस कुरान शरीफ की दलीलों से, कुरान की दलीलों से मैं जो तुझे हिदायत दे रहा हूं इसके आधार से उनका सामना करना, उस कबीर के लिए जिहादन कबीरन, उस कबीर के लिए, कबीर अल्लाह के लिए संघर्ष करना, लड़ना नहीं, जिहाद का अर्थ लड़ना नहीं होता, संघर्ष करना, उनकी बातों में ना आना, सीधी सी बात। अब देखो अब हमने 52 का अर्थ पढ़ लिया, अब 607 पर सूरत फुरकानी 25, और ये कबीर नामक अल्लाह वही है जिसने दो दरियाओं को मिला चलाया, एक का मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी, और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिब नसीब नसब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया, और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज के करने में शक्तिमान है, और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं देवताओं को जो न उनको नफा पहुंचा सकते हैं और न उनको कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर तो अपने परवरदिगार से यानी कबीर से, कबीर अल्लाह से मुंह मोड़े बैठे, पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। अब 56 या 55 समाप्ति, और 56 में कहा कि ए पैगंबर हमने तुमको खुशखबरी सुनाने और सिर्फ अजाब से डराने के लिए भेजा। 57 में कहा है कि इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म का पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता, हां जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुंचने की राह इख्तियार कर ले। अब 58 में कमाल कर दिया, ए पैगंबर उस जिंदा पर भरोसा रखो, चैतन्य नहीं, कबीर परमात्मा जैसे अच्छी आत्माओं को मिलते हैं वेदों में आपने पढ़ा, ऐसे आदरणीय धर्मदास जी को, आदरणीय गरीबदास साहेब जी को, आदरणीय नानक साहेब जी को, ऐसे ही आदरणीय मोहम्मद साहेब जी को मिले थे इस जिंदा महात्मा के रूप में, लेकिन इन्होंने इनकी बात को स्वीकार नहीं किया था। और वो कुरान शरीफ ज्ञानदाता कहता उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, वो अविनाशी है, वह जिंदा महात्मा रूप में तुझे मिला था, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। यानी गीता ज्ञानदाता किसी और अल्लाह की पाकी बयान करने को कह रहा है, और अपने बंदों के गुनाहों से वो काफी खबरदार है। ये कबीर है, यहां पर ये 58 नंबर आयत है, यहां देखो 58, ये 58 है, यहां पढ़ेंगे। ये खबीरा लिखा है, इबादही खबीरा, इबादही माने पूजा के योग्य, वो कबीर है। इबादत, इबादत माने पूजा, इबादही यानी पूजा के योग्य, वो कबीर है। कबीर 58, यहां फिर हम आएंगे इसके, ये 58 हम पढ़ रहे हैं कि वो अपने भक्तों के, वो जिंदा रूप में तुझे मिला था उस पर भरोसा रख, वो अविनाशी परमात्मा है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो। अपने बंदों के गुनाहों से वह कबीर खूब खबरदार है, यानी पाप नाश कर देता है, वो कबीर खबरदार है। कबीर लिखना था, कबीर अल्लाह, अल्लाहु अकबर, जानता है सब कुछ। अब 59 में कमाल कर दिया, और जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ भी उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया, और फिर तख्त पर जा विराजा, वो अल्लाह बड़ा। अब इन्होंने यहां भी कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, वो अल्लाह कबीर है, ये लिखना था, वो अल्लाह कबीर है। ये 59 में, यहां देखो, ये फिर 59 आ गई, इसमें फिर खबीरन लिखा है, अरहमानू फसल भी ही खबीरन, कबीरन कहो, कबीर कहो, खबीर कहो, तो इन्होंने इसका अर्थ भी बड़ा कर दिया। अब फिर पढ़ेंगे इस 58 नंबर को, जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया। जो पवित्र बाइबल जो ज्ञान देता है, 60% ज्ञान वही कुरान शरीफ में है। 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, वह अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर, वो अल्लाह अकबर, वो अल्लाह कबीर है, वो भगवान कबीर है, बड़ा दयालु है, रहमान है। और उसकी खबर, उसकी जानकारी किसी बाखबर इलम वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। इससे सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञानदाता भी उस अल्लाह यानी बड़े भगवान, जिसको ये बड़ा कहते हुए मान ले, उसके बारे में अल्पज्ञ है, उसकी जानकारी नहीं रखता। उसके लिए स्पष्ट किया है कि वो साकार परमात्मा है, उसका नाम कबीर है, 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, तो वो विराजमान हुआ है, एक देशीय है और साकार है, मनुष्य सदृश है, वो पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया। अब आज उन मुसलमान भाइयों का दावा भी गलत से दोहा, जो हिंदुओं को यूं कहते थे ये देवताओं को पूजे इनका मोक्ष नहीं हो सकता, तो वो भी अब काल के ही जाल में है, उनको भी सोचना पड़ेगा। हम एक पिता की संतान है, पुण्यात्मा परमात्मा का पाना बहुत आसान है, ये विश्वास होना कि कौन परमात्मा है, वो क्या स्थिति में है, वो कैसी लीला करता, उसको पहचानना अनिवार्य है, और कौन सी वे ऑफ वर्शिप है, वो पूजा की विधि क्या है जिससे मोक्ष होगा, वो कौन है, कैसा है, उसका नाम क्या है, उसका प्रमाण क्या है, तो उसका प्रमाण सदग्रंथों में है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि अर्जुन जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको, उनकी न तो गति होती है यानी मोक्ष नहीं होता, ना उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है और न ही कोई सुख होता है, यूजलेस। 24वें श्लोक में 16वें अध्याय में कहा गीता जी में कि अर्जुन इससे तेरे लिए अर्जुन शास्त्र ही प्रमाण है, कर्तव्य और अकर्तव्य के लिए कौन सी करनी चाहिए साधना, कौन सी ना करनी चाहिए, किसी के लोकवेद पर विश्वास ना करना। जैसे इंद्रादास स्वामी वालों का लोकवेद आपने देखा दो तो हंसी आवे, इनको ये नहीं मालूम सतनाम खान का है कि पीण का, गाटा जोड़ रहा क्या, सतनाम सारनाम भी वही है, सतनाम भी सार, सतनाम को कहते हैं सतपुरुष भी सतनाम, सार शब्द भी सतनाम, और सचखंड भी सतनाम, और सतपुरुष भी सतनाम, ये जाएंगे सतलोक है, थरा गजब भैया। अपुनात्मो सृष्टि रचना सुनाने के लिए इतनी भूमिका बनाई थी ताकि आपका ये बात यकीन हो, विश्वास हो कि ये दास जो कह रहा है और परमात्मा ने जो कहा दास वही कह रहा है। एक तो आपने इस तत्वज्ञान को समझने के लिए जो इस आश्रम आते हैं ये निरसंशय हो जाना कि ये दास जो शब्द बोलेगा वो 100% सत्य होंगे, फिर आपको समझण में आसानी हो जाएगी, इस मन का फतूर ना रहेगा। और ये विश्वास दिलाने के लिए कि दास जो बोल रहा है वो सारी साची है, ये प्रमाण दिखाता हूं। इन प्रमाणों को समझने के बाद फिर आपको ये भी देख लेना कि कहीं कोई ना प्रमाण दिखा पावे दास, और जो शब्द बोलेगा वो प्रमाणित समझ लेना, तो बहुत शीघ्र समझ में आ जाएगी आपके भगवान की ये परिभाषा। अब ये जो सृष्टि रचना जो दास सुनाने चला था, अब बहुत शॉर्ट कट में सुनाऊंगा, 5-4 मिनट में, समय अच्छा हो गया है। पुणात्मा वैसे तो परमात्मा के लिए तो महापुरुषों ने जैसा भी उनके गुरुओं ने बता दिया शीश देने की तैयारी कर दी, सारा खड़े होकर तप किया, अग्नि के चारों तरफ आग जला के बीच में बैठ के तप किया, घर त्याग दिया, ऊपर को पैर करके साधना की, व्रत भी रखने शुरू कर दिए। जैसे जैनियों में देखो आप इतने घोर व्रत कराते हैं, उपवास रखवाते हैं, वो भी उनको मंजूर है, एकादे की तो डेथ भी हो जाती है लेकिन फिर भी वापस नहीं हटते। तो परमात्मा पाने के लिए हमने समय निकालना चाहिए, और ये कथा परमात्मा की सत्यनारायण कथा है, इसको सुनने से भी आत्मा प्रबल होती है, इसके इसे चारज होती है, कुछ पाप इस ज्ञान यज्ञ से नाश होते हैं जो दास आपको सुना रहा है। और पहले हम क्या करते थे, जैसे जब यो ज्ञान नहीं था, पहले VCR चले थे, और एक VCR का एक नाइट का 100 रुपये चार्ज होता था, 3 कैसेट लिया करते, 3-3 घंटे की फिल्म, और शाम ने चालू कर दिया करते 8 बजे, और चाह बनवाए जाते और पिए जाते हैं, और नुआक पाड़े देखे जाते, भाई पूरे 100 रुपये पूरे करांगे, तीनों फिल्म चलावेंगे, 9 घंटे चलाते, और लेना एक न देना दो बकवाद सारी। और यहां परमात्मा की कथा अगर 10-20 मिनट पहले ज्यादा भी हो जाए तो हौसले से कथा सुननी चाहिए भगवान की, क्योंकि ये अनमोल रतन आज तक किसी को प्राप्त नहीं हुआ, आप पर वर्षा करवाई भगवान ने। और पहले हम सांग देखने जाया करते गांव में, मैं बैठ जाते वो बकवाद करें जाते, और हम रेत में बैठ जाते जहां गधे बिना बैठे, और सुबह देखा करते ना यहां बैठे थे काल रात ने तेरे की, तो दिन में जो बात देखा भी ना जा उस रेत में बैठे थे और बकवाद सुना करते थे, और यहां सारी सुविधा दी भगवान ने आपके अपने बच्चों को, और ये ज्ञान सुना रहे हैं आप, आपकी किस्मत का अंदाजा नहीं लगा सकते कितने पुण्य हैं आपके, लख भर सूरा जो जी लख भर सामत दे लख भर यती जहान में जबकि दशत गुरु शरणा ले, बहुत पुण्यकर्मी युगों युगों के तुम रहे हो, आज आपको यहां कोई भी कारण बना के थे दुखी करके थे सुखी करके लाए हैं भगवान, आप रहम किया उसने, आपके लिए जो दुख तुम्हें यहां लेकर आया वो दुख भी आपके लिए वरदान होगा कि इसके कारण आपको भगवान मिल गया, और दुख तो इसके दरबार में रहना ही को नहीं, जब विश्वास आपके दृढ़ हो गया था। तो सतलोक के अंदर परमात्मा ने एक शब्द में 16 द्वीप उत्पन्न किए, फिर 16 वचनों से एक एक पुत्र की उत्पत्ति की, उसके बाद परमात्मा ने उन 16 पुत्रों में से जिसका नाम अचिंत था उससे कहा कि अचिंत अब तू सृष्टि रच, उसको आदेश दिया ये दिखाने के लिए कि बालकों का काम नहीं सृष्टि रचना, समर्थ बिन कोई काम सफल नहीं होता। अचिंत ने क्या किया, अपनी वचन शक्ति से एक पुरुष उत्पन्न किया जिसको अक्षर पुरुष बोलते हैं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष कहे, सर्पुरुष और अक्षर पुरुष। अब सर्पुरुष और अक्षर पुरुष की उत्पत्ति बताई जा रही है कैसे हुई। अक्षर पुरुष की उत्पत्ति अचिंत ने अपने वचन से की, परमेश्वर के आदेश से, परमात्मा ने उसको इतनी शब्द शक्ति दे दी थी। अक्षर पुरुष जब उत्पन्न हो गया वो अपनी मनमर्जी से चल पड़ा, अचिंत ने कहा था मेरा सहयोग दे सृष्टि में, उसकी नहीं मानी, जाकर के एक मान सरोवर है ऊपर अमृत जल से भरा हुआ, उसमें जाके छलांग लगाई नहाने के लिए और उसमें आनंद आया, सो गया। वहां श्वासों से शरीर नहीं है। अब वो सो गया तो अचिंत बैठा बैठा देखे, तब परमात्मा ने कहा कि बेटा समर्थ के बिना ये काम नहीं हो सकता, और अब तू बैठ जा आसानी से। अब वहां गए परमात्मा ने, उस सत्य पुरुष ने, कबीर देव ने क्या किया, सरोवर से उसी जल से एक सरोवर से जल लिया, अपनी शक्ति से उसको एक अंडा बना दिया, जैसे जादूगर बनाता है उसको अंडे को, अंडे में एक आत्मा प्रवेश कर दी अपने वचन से। वो अंडा बहुत बड़ा था साइज में, वो गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ नीचे को चला। उसकी अक्सर पुरुष की निंद्रा भंग होगी, अब कोई अधूरी निंद्रा में कोई जगा दे तो उसको बड़ा दुख सा होता है। इस दुख महसूस किया उसने, कोप किया और अंडे को कोप से देखा, क्रोध से, उस क्रोध से वो अंडा फट गया। उसमें से ये सर्पुरुष यानी ज्योत निरंजन काल निकला एक मनुष्य रूप में। इन दोनों से कहा कि अक्सर पुरुष तुम निंद्रा में थे, आकाशवाणी की परमात्मा ने बाहर से, और तुम बाहर आओ, तुझे जगाने के लिए सब लीला की गई है, तू बाहर आओ। दोनों जने, वो दोनों बाहर आ गए और उनसे कहा कि तुम अचिंत के द्वीप में रहो, तीनों एक द्वीप में। वो तीनों दोनों वो चले गए, एक अचिंत हो गया। अब कुछ दिनों के बाद इस ये सर्पुरुष ज्योत निरंजन कहो, सर्पुरुष कहो और अक्सर पुरुष कहो, चाहे परब्रह्म कहो, ये दोनों अचिंत के लोक में रहने लगे। कुछ दिनों के बाद इस सर्पुरुष यानी ज्योत निरंजन कहो, इसे काल कहो, काल आगे जाके ही बनेगा। तो इस सर्पुरुष ने सोचा हम तीन तो एक द्वीप में और अन्य हमारे भाई एक एक द्वीप में। उसके बाद परमात्मा ने क्या किया, हम सबकी उत्पत्ति कर दी, जितने आज हम यहाँ कीड़ी कुंदर हाथी मनुष्य राजा देव देवता जो भी हैं, सभी की उत्पत्ति करके और सतलोक में सबको अलग अलग स्थान द्वीप दे दिए थे कि तुम रहो ठाट से। तो इसको ये चिंता होगी, दुख हुआ, ईर्षा हुई कि हम तो तीनों एक लोक में, सारे सब अब अपने अलग अलग स्वतंत्र रह रहे हैं। तो इसने तप करना शुरू किया। सत्तर युग जब तप किया, प्रभु ने पूछा तू क्या चाहता है, परमेश्वर ने पूछा तू क्या चाहता है, इसने कहा कि हे पिता, हे परम पिता, मेरे लिए स्थान कम है, मुझे अलग से कोई स्थान दे दो। तो परमेश्वर ने इसको 21 ब्रह्मांड दे दिए, जैसे कोई धनी पिता अपने पुत्र को 21 प्लाट दे दे, अगले 21 प्लाट। वहां ये गया रहने लगा, इसने देखा लेकिन वह खाली पड़ा था, इसने सोचा कुछ कंस्ट्रक्शन हो। इसने 70 युग तप फिर किया। हम कैसे फंसे यहां पर, इस काल के साथ कैसे आ गए यहां इतने गंदे लोक में, हमने वहां पर गलती की थी, हमारे पिता ने हमारे को सब सुविधाएं दे रखी थी, कोई असुविधा नहीं थी किसी प्रकार की भी, हम अजर अमर थे, हम सदा युवा रहते थे, हमारे परिवार थे वहां पर, पूरे ग्रुप के ग्रुप परिवार के परिवार थे। सतलोक में सृष्टि है ऐसी ही है, लेकिन वहां के हंस आत्मा है, वहां मृत्यु नहीं होती, बुढ़ापा नहीं होता, सदाबहार वृक्ष रहते हैं, कोई राग द्वेष नहीं, कोई भाई बंटवारा नहीं। और ये राधा स्वामी वाले जितने भी सब कहते हैं सतलोक में तो प्रकाश ही प्रकाश है, वहां आत्मा परमात्मा में ऐसे मिल जाती है जैसे बूंद समुन्द्र में। अरे कोई डूब का मरना है, वहां पर ढूंढ रहे हैं भगवान को, परमात्मा को तलाश कर रहे हैं, उसके दर्शन करेंगे, बैठेंगे, बतलावाएंगे, अपना दुख रोएंगे, हैं देख देख कर खुश होएंगे, इनको भगवान निराकार है, प्रकाश ही प्रकाश है, और आत्मा उसमें ऐसे गिर मिल जाती है जैसे बूंद समुद्र में। ये तो एक डूब का मरने वाली बात होगी, है किसे भी मत चलो, कहेंगे चलो समुद्र में डूब मरो, भगवान मिलेगा, लो अभी ना जाओ। तो ये मूर्ख बना रखे हमने, उन्हें पता है ना सतलोक का मेरा, इन जाने वालों ने पता है उड़ा जाना उना कुछ है को नहीं है। तो बात बात वो बनाओ सुन लेते हैं श्रद्धालु। तो वहां पर सृष्टि है एज इट इज है, भगवान मनुष्य दृश्य है, उसके रोम एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा इतनी रोशनी उस मालिक के वहां के रूप में। वहां से वो हल्के तेज पुंज का रूप बनाकर सरल करके यहां आता है, वेद भी बता रहे हैं, और ये 600 साल पहले परमात्मा ने अपनी महिमा आप बता रखी है कबीर वाणी में। तो वहां से वो परमात्मा ने आके खुद बता। तो हम अपने भगवान को छोड़ के जिसने हमारे को सारा सुख दे रखा था, हम इस पर आसक्त हो गए। यू खड़ा होगा तब कर रहा था, और जो देखो देखो हो कितने इतने वर्ष खड़ा रहा, हो बड़ा कमाल कर दिया। अब हमारे ये बीमारी वहां से लगी थी बुराई, जैसे अब है एक हीरो या हीरोइन, अभिनेता अभिनेत्री अपने पेट के लिए नाचा कूदी उछलम कूदम मेकअप करते हैं और हम उन पर आसक्त होते हैं। यहां एक बरुवाला में या हिसार में कोई एक्टर आ जाए, नेता अभिनेता आ जाए और देखो नौजवान लड़के और लड़कियों की उड़ा लाइन लग जाएगी, हजारों की संख्या में इकट्ठे हो जाएंगे और दूर तो देखेंगे वो खड़ा वो खड़ी, सारे दिन धक्के खा के नो आ जाएंगे, बताओ वो खड़े तर वो खड़ी तो उनके मिल गया। वो अपने पेट के लिए भटक रहे हैं और हम उनको देख आसक्त हो रहे हैं और कहते हैं मेरा फेवरेट वो है ये हीरो फेवरेट, इन फेवरेट ने मार दिया, यू हमारा फेवरेट हीरो हो गया वहां पर सतलोक में। और परमात्मा ने आकाशवाणी की के बच्चों तुम इसने ना देखो, मस्त रहो, भक्ति करो, चैन से रहो, इसका कर्म ठीक नहीं है ये, परमात्मा ने इसको भी मना किया था पर इसने ये माना नहीं। और हमें भी मना किया था कि इसकी तरफ ना ध्यान दो तुम मस्त रहो, लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो गए पर अंदर से कसक नहीं गई, इसके प्रति कति फिट हो गया, आकर्षित हो गए, अंदर से कसक बन गई जबरदस्त। वो तो अंतर्यामी सारी जानते हैं। जब इसने दूसरी बार तप किया तब पूछा भी क्या मांगता है तू, सत्ययुग तप किया, तब इसने कहा प्रभु मुझे कुछ कंस्ट्रक्शन सामग्री दे दो ताकि मैं कुछ रचना रचू। परमात्मा ने पांच तत्व और तीन गुण दे दिए कि ले बेटा खेल खिलौनों से। इसने सोचा भी ये भी बना लूंगा लेकिन जीव नहीं है तो मैं करूंगा क्या, मुझे आत्मा भी चाहिए, किले का दिल नहीं लगे। तब इसने 64 युग तब फिर किया तो प्रभु ने पूछा क्या मांगता है बोल, तूने जो मांगा मैंने सब दे दिया। तब इसने कहा कि मुझे कुछ जीव दे दो, आत्मा दे दो प्रभु। अब परमेश्वर ने कहा कि भाई ये आत्मा नहीं दे सकता तुझे किसी भी सूरत में, हां तुझे और प्लाट चाहिए और दे दूंगा ब्रह्मांड, 5-7-10 चाहिए, ये नहीं दे सकता क्योंकि ये मेरी आत्मा है, मेरे वचन से उत्पन्न हुई है, मेरी हृदय है, ये मेरी आत्मा है, ये नहीं दे सकता तुझे। लेकिन एक शर्त है, यदि कोई स्वयं तेरी स्वेच्छा से जाना चाहता है तो जा सकता है, जा पूछ ले। तू हमारे पास आया, जितने हम यहां फंसे हुए हैं हमसे पूछा क्या मेरे साथ तुम चलोगे, अलग से मैंने तप करके अलग से राज्य प्राप्त किया है, वह ऐसे रहेंगे, ऐसे देव बनाऊंगा, महादेव बनाऊंगा, हैं दूधों की नदी बहाऊंगा। अब वहां कोई कमी थी हमने, लेकिन बुद्धि भ्रष्ट होगी, हम बोले ठीक है पिताजी आज्ञा दे देंगे तो हम चल पड़ेंगे। अब उसने परमेश्वर कबीर देव से कहा काल ने के पिताजी कुछ आत्माएं मेरे साथ जाने को एग्री हैं। परमेश्वर ने कहा कि मेरे सामने स्वीकृति दिला दो। परमेश्वर आए वहां से स्वयं और हमारे पास आकर खड़े हो गए। परमेश्वर ने कहा कि बोलो भाई कौन जाना चाहता है इसके साथ, हाथ खड़ा करो। अब परमात्मा ने पहले तो हमें मना किया था कि इस पर आसक्त मत हो, हम शर्मिंदे हो गए, नीचे को मुंह कर लिया, कोई नहीं बोला, सन्नाटा छा गया। तब परमेश्वर ने कहा कि रे तो आप तो कह रहे, तू तो कह रहा था ये बहुत कुछ मेरे साथ जाने वाले हैं, ये तो कोई बोलता ही नहीं, झूठ बोलता था तू। इतने में एक आत्मा ने सोचा कहीं बात ना बिगड़ जाए, हिम्मत सी करके खड़ा हो गया, खड़ा होकर कहा कि प्रभु मैं जाना चाहता हूं इसके साथ। अब पीछे फिर हमने सोचे कि देखिए कलाई लूट जाए लूट, फिर तो हम देखो देखा जैसे बच्चे स्कूल में एक हाथ खड़ा कर लिया सारे कर लिया, अगर नो 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 तो हम सब खड़े हो गए और दोनों हाथ कर लिए, हम भी जाना चाहते हम भी जाना चाहते। परमेश्वर ने कहा भाई ठीक है, मैंने इनके नंबर नोट कर लिए इन आत्माओं के, किस किस ने स्वीकृति दी है और आप अपने लोक में जा, इनको मैं विधि से भेजूंगा, एज इट इज नहीं भेज सकता। तो क्या किया परमात्मा ने, हमें बीज रूप बनाया सूक्ष्म, और जिसने सबसे पहले काल के साथ आने की स्वीकृति दी थी उसको एक लड़की का रूप बना दिया, युवा लड़की युवती खूबसूरत लड़की बना दिया जो आगे चल के दुर्गा कल आई, और उसके अंदर हम सब आत्माओं को फीड कर दिया अपने वचन से, और उससे कहा कि बेटी मैंने तुझे सर्व शक्ति दे दी है, परमेश्वर कबीर देव जी ने कहा, और जितने जीव ये ब्रह्म कहे सर्वपुरुष कहे उतने तो उत्पन्न कर देना, तेरे वचन में शक्ति दे दी तो वचन से भी उत्पन्न कर सकती है। अपने पुत्र सैंत दास से कहा कि पुत्र जा अपनी बहन को ज्योत निरंजन के पास छोड़ गया सर्वपुरुष के पास, उसके ब्रह्मांड ये सभी ब्रह्मांड वही थे सतलोक के अंदर, ये वहां खड़ा था। सैंत दास उस लड़की को लेकर गया प्रकृति को, दुर्गा को, और वहां जाकर कहा कि ले पिताजी का आदेश है ज्योत निरंजन, जितनी भी आत्माओं ने तेरे साथ आने की स्वीकृति दी थी उन सबको इसके अंदर फीड कर दिया भगवान ने, भर दिया, और इसको वचन शक्ति दे दी है, जितने जीव तू कहेगा ये वचन से बना दिया करेगी। और ऐसा कहकर सहजदास वापस आ गया। अब ज्योत निरंजन ने देखा इस ब्रह्म ने सर्वपुरुष ने युवा लड़की अपुन आत्माओं ये यहां बलात्कार और ये बकवादें जो हैं ये हमारे अंदर इस मन वहीं से घर कर गई थी, इस काल में ये मन रूप में सबके अंदर विद्वान हो गया, इसने ऐसा एलिमेंट छोड़ दिया हमारे अंदर, इसके अंदर ये दोष आ गया। एकांत में अकेली युवती को देखकर इसने उसके साथ जुल्म करना चाहा, लड़की भी भांप गई इसके इरादे को और कहा कि ज्योत निरंजन बात सुन, तू मेरा बड़ा भाई, तू मेरे से पहले उत्पन्न हुआ, अंडे से परमात्मा का ही उत्पन्न किया हुआ है और उसी से मेरा जन्म हुआ, तू मेरा बड़ा भाई मैं तेरी छोटी बहन, बहन भाई का यो क्रम अच्छा नहीं होता, तू जुल्म ना करे, पिताजी ने मुझे शब्द शक्ति दे रखी है वचन शक्ति, जितने जीव कहेगा मैं बना दूंगी। इसने एक नहीं सुनी, हद से आगे बढ़ गया, लड़की ने अपनी इज्जत सुरक्षा के लिए कुछ ना पाया तो उसने छोटा रूप बनाया, और इसने बकवाद के लिए मुंह खोल रखा था, मुंह के माध्यम से पेट में चली गई, वहां से परमेश्वर कबीर देव अपने पिता से पुकार की, भगवान मेरी रक्षा करो। परमात्मा ने कहा जोगजीत सहजदास जाओ उसके पास, और परमेश्वर स्वयं ही आए अपने पुत्र का रूप बना के और कहा ज्योत निरंजन तुमने जुल्म कर दिया, ऐसे पवित्र लोक में जो ऐसी गलती करता उसको ये सजा है कि तू आज से काल कहागा 1,00,000 मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाया करेगा, 1,25,000 उत्पन्न करेगा, आज से तेरा नाम काल होगा। लड़की को दुर्गा को उसके पेट से निकाल दिया और उन दोनों को 21 ब्रह्मांड समेत सतलोक से निष्कासित कर दिया। 16 शंख कोश की दूरी पर 21 ब्रह्मांड आकर रुक गए और यहां फिर अपने मालिक की विधि अनुसार ये चक्कर काटने लगे। अब काल ने फिर सोचा कि अब मेरा कौन के बिगाड़ेगा जो इन्होंने सजा देनी थी मुझे दे दी। दुर्गा के साथ फिर दुर्व्यवहार शुरू किया। इसने फिर प्रार्थना की कि ज्योत निरंजन पहले तो तू मेरा बड़ा भाई, मैं तेरी छोटी बहन, दूसरे मैं तेरे पेट से बाहर आई हूं तेरी बेटी होगी, यानी इसने अपनी इज्जत बचाने के लिए सब कुछ कह दिया पर इसका कोई असर नहीं हुआ। परमात्मा ने देखना था कि ये कितना बकवाद कर सकता है और लड़की को प्रजनन इंद्री भी अपनी तरफ से नहीं लगाई थी। इसने अपनी सिद्धि शक्ति से नाखूनों से प्रजनन इंद्री बनाई और दुर्गा के साथ विलास किया, 3 पुत्रों की उत्पत्ति की, बड़े का नाम ब्रह्मा, दूसरे का विष्णु, तीसरे का शिव हुआ। अब मैं तुमसे कहूं चिताई त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई, मूर्ख सुने तो गम ना पाई, माष्टंगी पिता निरंजन ये जमदारुण वंशन अंजन, पहले की निरंजन राई पीछे से माया उपजाई, माया रूप देख अति शोभा देव निरंजन तन मन लोभा, निरंजन की ने भोग विलासा माया को रही तब आशा, 3 पुत्र अष्टंगी जाए ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए, 3 देव विस्तार चलावे इनमें यो जग धोखा खावे, 3 गुणों की भक्ति में ये भूल पड़ो संसार, कह कबीर निज नाम बिना कैसे उतरो पार, 3 देव की जो करते है भक्ति उनकी देना हो मुक्ति, बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव कबीर साहिब, ये हम सभी आत्माओं के पिता हैं, हमारे जनक हैं, ये हमारे हितैषी हैं, हम दर्द हैं। और हम जिस लोक में रह रहे हैं ये अपना मूल ठिकाना नहीं है, हम यहाँ के वासी नहीं हैं, यहाँ हम सुखी नहीं हो सकते। और जिन आधारों को हम सुख मान रहे हैं, निसंतान सोचता है मुझे संतान हो जावे मैं सुखी हो जाऊंगा, निर्धन सोचता है मैं धनवान हो जाऊं सुख होगा, धनवान को सुख सपने में भी नहीं होता, धनवान सोचता है राजा लोग सुखी होंगे, राजा सोचते हैं कि स्वर्ग के देवता सुखी होंगे, देवता सोचते हैं कि इंद्र स्वर्ग का राजा सुखी होगा, इंद्र सोचता है ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी होंगे, और ब्रह्मा विष्णु महेश उनका जीवन देख लो, सुख का सांस नहीं। श्रीमद देवी भागवत के अंदर स्वयं भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कह रहे हैं, ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कि आप तो सर्वेश्वर हो, आप भी ध्यान क्यों लगाए बैठे हो, किसका ध्यान करते हो, किस देवता की पूजा करते हो। भगवान विष्णु कहते हैं मैं दुर्गा का ध्यान करता हूं, देवी का, शक्ति का। और मेरे विचार में, मेरे जानकारी में, इससे बड़ी कोई शक्ति नहीं, इससे बड़ा कोई प्रभु कोई देव नहीं। और मैं अधिकतर तप करता रहता हूं, तप करने से फुर्सत मिलती है तो मैं फिर ज्यादातर राक्षसों को मारने के लिए युद्ध करता रहता हूं। थोड़ा बहुत सौभाग्य मिलता है, कुछ समय मिलता है, कुछ देर लक्ष्मी के पास रह पाता हूं। इससे सिद्ध है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी नहीं। तो पुण्यात्माओं, आप यहां सुख की चाह करते हो, ये भूल पड़ी है आपके। परमात्मा कहते हैं तन दर सुखिया कोए न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। तन दर सुखिया कोए न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो, सुख देव ने दुख के डर से गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देख्या, जो देख्या सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, आशा तृष्णा सब में व्यापे कोई मैल ना सुना हो। तंदर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करत हैं, मन सबका किया विवेका हो, सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो, साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो,
जिने ये राह चलाई ओ तन दर सुखिया कोई न देखा जो देखा सो दुखिया हो उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हो सूरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो सूरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो एक संत सुखी मन जीती हो तंदर सुखिया कोई ना देखा जो देखा सो दुखिया हो उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हो सूरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो सूरपति दुखिया भूपति दुखिया रंक दुखी बपरीति हो कहे कबीर और सब दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो संत सुखी मन जीती हो तंदर सुखिया कोई ना देखा जो देखा सो दुखिया हो उदय अस्त की बात करते हैं मन सबका किया विवेका हो सबका किया विवेका हो परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि पुण्यात्माओं तुम काल के जाल में फंसे हुए हो और जिस सुख को तुम छोड़ आए हो सतलोक में उसको तुम यहां खोज रहे हो। जो सुख आपको अपने घरों में होता है उस फैसिलिटी को आप जेल में चाह रहे हो वो कभी नहीं हो सकती। तो ये 21 ब्रह्मांड जेल है काल की। 21 ब्रह्मांड ये काल की कैद है। इसमें हम बंद हैं। कर्मों का दंड हम भोग रहे हैं और संस्कारों के बंधन से रस्से से बेड़ियों से हमें बांध रखा है और इस जेल में हम सुख ढूंढ रहे हैं। ये हमारी अज्ञानता और भोलापन है। इसके विषय में भगवान बता रहे हैं कि तन धर सुखिया कोई नहीं देखा। हमने परमात्मा कहते हैं इसकी 21 ब्रह्मांड में दौरा कर लिया कोई भी जीव सुखी नहीं पाया हमने। परमात्मा कहते हम ब्रह्मा के पास गए तो वो मां दुखी, विष्णु के पास गए उसने भी सैकड़ों चिंताएं अपनी बताई, शंकर जी के पास गए वो भी दुखी, और फिर कहते हैं कोई पूरी पृथ्वी का शासक हो भूपति यानी पूरी पृथ्वी का शासक हो उदय अस्त का राज जिसके पास हो उदय माने जहां से सूर्य निकलता है अस्त जहां छुपता है अर्थात पूरी पृथ्वी पर जिसका शासन हो वो राजा भी सुखी नहीं देखा हमने। फिर बताते हैं देखो एक परिवार का मुखिया वो प्रबंधक होता है अपने परिवार का और 5-4 सदस्यों के अरेंजमेंट में वो महा दुखी हो लेता है, टेंशन हो जाती है, रात को नींद भी नहीं आती उसको। और राजा एक अक्षेत्र का प्रबंधक होता है मुखिया होता है तो वो कैसे सुखी हो सकता है। ये तो हमारी एक अज्ञान हमने सुख के नापण का आधार गलत ले रखा है जिस कारण से हमने महादुखी आदमी व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। उसके लिए परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि भाई
घाटे बाद सब जग दुखिया। घाटा मीन हानि होगी किसी व्यवसाय में, वो तो नेचुरल दुखी, और जिसके घना धन हो गया वो महादुखी। सौ अरेंजमेंट सोचेगा, 20 लाख का बेनिफिट हो गया तो 50 लाख की कोई फैक्ट्री ला लेगा, अगले दिन मजदूरा हड़ताल कर माथा टेक कर बैठ जाएगा, क्या होगा मेरे 1 करोड़ डूब गया, फलान डूब गया, रात दिन नींद नहीं आती उसको। कहने का भाव ये है कि यहां कोई प्राणी सुखी नहीं, घाटे बद है सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। जैसे किसी ने घर त्याग दिया, बैराग ले लिया, जंगल में जा बैठा वन में, अब वन में फिर सारी समस्या करते भी ज्यादा, मच्छर न्यारे खावे, मक्खी सतावे, डांस लड़े, गर्मी सर्दी सतावे, और फिर भूख लग गए, फिर गांव में जावे, दिए माई उड़े अलख जगावे, फिर झोंपड़ी गाले, सौ व्यवस्था फिर कर ली। परमात्मा कहते हैं जो वास्तविक विधि है परमात्मा की भक्ति करने की, उससे तुम अपरिचित हो, और इस काल की प्रेरणा से प्रेरित होकर के साधकों ने अपने मन मुखे आचरण शुरू कर दिए। कोई व्रत रखता है, कोई झरनों में बैठकर जलधारा लेता है, कोई 5 धुने लगाकर अग्नि जलाकर बीच में बैठकर ढोंग करता है, कोई ऊपर बैठकर ऊंचे से स्थान पर जहां से सबको दिखाई दे से स्थान पर चिमटा गाड़ कर बैठ जाएगा आसन पदम लगा के, कि बड़ा साधक है और जनता दूर से देखेगी महात्मा तपस्या कर रहा है, फिर वहां जनता की लाइन लग जाएगी, दर्शनार्थ चढ़ावा चढ़ाने लग जाएंगे, दान करने लग जाएंगे। तो ये जो साधनाएं हैं ये शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण है। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23-24 में निर्णय दे दिया कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं उनकी न तो गति होती है, गति मीन मोक्ष, और न उनको कोई सुख होता है और न ही कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात व्यर्थ, यूजलेस। फिर गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक 24 में कहा है कि इससे तेरे लिए अर्जुन कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में कौन से कर्म करण योग्य हैं, कौन सी क्रियाएं ना करनी चाहिए, उनका निर्णय सदग्रंथ ही प्रमाण है, नथिंग एल्स। सदग्रंथ कौन कौन से है? पुण्यात्माओं, पवित्र पांचों वेद। आप जी ने केवल 4 वेद सुने हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। एक 5वां वेद है जो इन 4 वेदों की मां है, उसको सूक्ष्म वेद बोलते हैं, सूक्ष्म वेद संत भाषा में, और उसको तत्व वेद भी कहते हैं, तत्व ज्ञान भी कहते हैं, उसको सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी भी कहते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में कहा है कि अर्जुन जिन यज्ञों की, यज्ञमिनित यज्ञ का अर्थ होता धार्मिक अनुष्ठान साधनाएं, जिन यज्ञों का धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विवरण 4वें अध्याय के 25 से लेकर 30 तक दिया है, इनमें कोई तो देवताओं की पूजा करते हैं और कोई केवल योग अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, और कोई प्राणायाम, जैसे श्वास बाहर जाता है उस पर ध्यान रखे, अंदर जाता है उस पर ध्यान रखे, बस कोई जाप नहीं करना, इसको पान अपान की क्रिया बोलते हैं, और कुछ प्राणायाम करके अपना श्वास सूक्ष्म करके ध्यान लगाने का चेष्टा करते हैं, कुछ स्वाध्याय करते हैं, कुछ तीक्ष्ण अहिंसावादी व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी बांध ली, नंगे पैरों घूमना, झाड़ू सी लेकर, कुछ ऐसी साधनाएं करते हैं, कुछ स्वाध्याय ही करते हैं, नित कोई पाठ कर लिया किसी भी धर्म ग्रंथ का, तो परमात्मा कहते हैं कि ये जो साधनाएं हैं, सभी साधक अपनी साधनाओं को पाप नाशक जानते हैं। वो ये सोच रहे हैं हम जो साधना कर रहे हैं ये हमारा पाप नाश करेंगी, पाप नाश होने से ही परमात्मा मिलेगा। फिर बताए चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में गीता जी में कि इस प्रकार की धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी विस्तार के साथ ब्रह्मणे मुखे यानी सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यहां चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में अनुवादकर्ताओं ने अनर्थ किया है, शब्दों के अर्थ ठीक नहीं किए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ इन्होंने किया है वेद की वाणी, ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म का अर्थ प्रभु होता है, परमात्मा होता है, और ब्रह्मणे का अर्थ होता है बड़ा भगवान यानी सचिदानंद घन ब्रह्म। जैसे वेद तो विधान है प्रभु का और ब्रह्म परमात्मा है, यदि कोई राजा राजा का अर्थ संविधान करता है किसी प्रकरण के अंदर तो उसको ज्ञान नहीं है, वो मूर्ख है बिल्कुल। राजा तो एक प्रबंधक है, मैनेजमेंट करने वाला है, कंट्रोलर है। उस वेद संविधान उसका कानून है, उसमें कानून लिखा है कोई ऐसी गलती करेगा तो ऐसी सजा होगी, ऐसी करेगा तो ऐसी सजा होगी। ऐसे ही ब्रह्म तो प्रभु है और वेद उसका विधान है, तो यहां इन्होंने अर्थ गलत कर दिए। ब्रह्मणे मुखे का अर्थ है सचिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, मुखे माने उसके मुख से बोले गए वचन, उस कबीर वाणी में, उस सूक्ष्म वेद में बहुत विस्तार के साथ लिखे हैं। और उस ज्ञान को चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि वो तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता भी उस सूक्ष्म वेद से परिचित नहीं है। तो इससे यह भी सिद्ध हुआ कि सूक्ष्म वेद की जानकारी श्रीमद् भगवद गीता में नहीं है। ऐसे ही पवित्र चारों वेदों का वक्ता ब्रह्म कहा जाता है, ब्रह्म यही ज्योति निरंजन जो जिसने गीता बोली श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके, ऐसे ही उसने वेदों को परमात्मा की दया से उसने एकदम बाहर निकाले थे, फिर उनको स्वयं पढ़ा, फिर स्वयं पढ़ करके उसको अन्य ऋषियों को अंदर प्रवेश करके उसने ये ज्ञान बोला। और ब्रह्मा जी को चारों वेद एज इट इज लिखे हुए लिखित रूप में दिए गए थे। तो पुण्यात्मा यहां पर बहुत सी ऐसी धारणाएं होती हैं क्योंकि हम आध्यात्मिक ज्ञान से अपरिचित हैं और जिस कारण से हम इन बातों को स्वीकार करने को तैयार नहीं होते। इन माइंडलेस मैन जो थे महर्षि को आया करते थे जिनको ज्ञान कति नहीं था, वो कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में कागज कहां से आगे, लिख कैसे दिया, आदमी कहां से आगे फिर प्रारंभ में, कहते व्यक्ति तो भगवान ने उत्पन्न कर दिया, फिर एक कागज उत्पन्न करते भगवान कहकर माट लग जाएगी। ऐसी बेतुकी बातों पर जीव को अड़ा कर रख दिया। तो इस प्रकार हमने आत्म ज्ञान को समझने के लिए अग्रम अग्रम छोड़नी पड़ेगी, हमारे अंदर यह भावना आ जानी चाहिए भगवान जो चाहे सो कर सकता है, एक वचन में सब ब्रह्मांडों की रचना कर सकता है, एक सेकंड के अंदर सब का विनाश करके इनको तय करके रख सकता है, और दूसरी सेकंड में एज इट इज कर सकता है, जैसे आप बैठे हो एज इट इज न्यू का न्यू वहीं से शुरू करवा दे आपके जीवन को। इसका नाम समर्थ शक्ति परमात्मा कबीर देव है। मौला थल से जल करे और जल से थल कर देत, हे साहेब तेरी साहेबी अब श्याम कहूं सवेत। परमात्मा सब कुछ कर सकते हैं। जब तक आपके मन में ये खरपतवार भरा पड़ा है, खुरापात भरे हैं, ऐसा नहीं हो सकता वैसा नहीं हो सकता, तो आप इस अध्यात्म ज्ञान को नहीं समझ सकते, फिर आपका प्रयत्न व्यर्थ होगा। पुण्यात्माओं श्रद्धालु की श्रद्धा ब्लाइंड होती है, वो ब्लाइंड फेथ करता है और ऐसे ही करना चाहिए, लेकिन उस श्रद्धालुओं की श्रद्धा का उस स्वभाव का जो एक श्रद्धालु के अंदर होता है वो ब्लाइंड फेथ करता है अपने गुरुओं पर ऋषियों पर जो वो बताते हैं, टीचर्स पर जो टीचर होते हैं आध्यात्मिक टीचर, और उन्होंने श्रद्धालुओं ने इन अज्ञानियों को महर्षि मंडलेश्वर और परम धड़ी मान लिया, सतगुरु समझकर उन पर विश्वास कर लिया, उन्हें जो वचन कहे धार लिए, सरोधार्य कर लिए, वो दुरुपयोग किया उन्होंने। अभी तक मूर्ख बना रहे हैं, उनको खुद ज्ञान नहीं, श्रद्धालु उनके पीछे लगे हुए हैं।